मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 मई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग एक बहुत ही व्यावहारिक मुद्दे पर बात करते हैं और यह व्यावहारिक मुद्दा सच पूछे तो हम सबसे संबंधित हम सबसे ही जुड़ा हुआ है। मेरे के स्टूडेंट ने ही जो जिसमें आप में से कोई भी हो सकता है एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सवाल यह है फ्रेंड्स कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में बड़े रूढ़ होते हैं, हालांकि ठीक है उनके मन में उस तरह की बुरी भावनाएं भी नहीं होती और वैसे चरित्र की दृष्टि से भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन बोलने में वो इतने रूढ़ होते हैं, मतलब कह लीजिए कि इतने कटु होते हैं, इतने नीरस होते हैं, रूखे होते हैं कि उनसे बात करने का मन नहीं करता और यही लगता है कि भैया इससे जितनी जल्दी हो सके किनारा कर लो। ऐसा क्यों होता है, उन लोगों में इतनी समझ क्यों नहीं होती और इस तरह के उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। दोस्तों नो डाउट कि हम सब का सामना मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों से हुआ होगा और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इसी श्रेणी के ही हों। आप एक चीज और देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं कहीं तो बड़े विनम्र होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और कहीं कहीं वही लोग जो यहां सॉफ्ट स्पोकन है दूसरी जगह पर बहुत रूढ़ हो जाते हैं। और सच पूछिए तो जब उनके बारे में किसी से कहिए कि भाई यार उस तो बोलने में बहुत वो रूढ़ है और बड़ा रूखा बात करता है तो वो विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं वो तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप कैसे ये बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये जीवन की धूप छावी रंग है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। जिनके सामने वो रूखे हैं हो सकता है कि ऐसे लोग हों जिनके जिन्होंने उनके प्रति बड़ा खराब व्यवहार किया हो, ये भी हो सकता है कि वो पद में छोटे हों या ऐसे इश्यूज पर बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर बात चल रही हो जिसके कारण उनकी आवाज रूखी हो गई है और उनकी जो भाषा है वो थोड़ी सी ज्यादा कटु हो गई है। तो देखिए इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सीधे सीधे एक निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यह चीज एकदम स्थायी नहीं है। लेकिन यहां एक बात और भी है मित्रों कि कुछ लोग जिनकी संख्या मैं समझता हूं कि बहुत कम होगी ऐसे होते हैं जो रूढ़ ही होते हैं, रूखे ही होते हैं, वो जिससे भी बात करें रूखे बड़े नजर आते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों को ध्यान में रख करके कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारी बातचीत होती है कम्युनिकेशन स्किल ही आप कह लीजिए कि उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये कम्युनिकेशन स्किल पर बात नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्किल का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है सच पूछे तो हम उस पर बात कर रहे हैं, उसके विज्ञान पर बात कर रहे हैं, उसके कौशल पर बात हम नहीं कर रहे हैं। जो हमारी जो भाषा है, जो बोलचाल जो हम दूसरों के साथ जो एक्सप्रेस करते हैं, उसके दो बहुत स्पष्ट पक्ष होते हैं। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा हूं। एक तो है ध्वनि, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड से साउंड निकलते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो वो एक ध्वनि निकल रही है, राइट। और दूसरी है वो कंपोजिशन ऑफ साउंड यानी कि भाषा। ध्वनि का मतलब है, यहां भाषा को हटा दीजिए है ना, ध्वनि का मतलब धुन से है, जो म्यूजिकल जो चीज है वो निकल रही, उसको मैंने ध्वनि कहा है। हाँ उसमें जब आप ABCD डाल देंगे, क ख ग घ ङ डाल देंगे तो वो भाषा हो जाएगी। तो इसके दो पक्ष हो गए, एक ध्वनि का पक्ष हो गया जिसे हम सामान्य तौर पर कह लीजिए कि टोन कह देंगे, यार उसकी टोन बड़ी बेकार है, यार वो तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, उनकी आवाज बड़ी मीठी है, अरे बाप रे तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि जहर उगल रहे हो, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं ना। तो ये ध्वनि पर भी होती आधारित होती है, साथ ही साथ भाषा पर भी आधारित होती है। भाषा का मतलब है कि वो किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, प्यारे शब्द हैं, कोमल शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, लवली हैं, या फिर बिल्कुल लठमार भाषा जिसको कहते हैं, एकदम लठमार भाषा है, ऐसा लगता है जैसे कि सिर पे डंडा मार दिया हो। अब ये शब्दों के चयन पर डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए कि जो भाषा बनी वो दो चीजों से मिलकर बनी, ध्वनि और शब्द। और याद रखिए ये ध्वनि और शब्द ये दोनों चीजें हमारे ज्ञान से संचालित नहीं होती हैं। ज्ञान की एक सीमा, ज्ञान की सीमा है लेकिन एक लिमिट तक, ज्ञान का कंट्रीब्यूशन है, सॉरी ज्ञान का योगदान है लेकिन एक सीमा तक। सब कुछ ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिलेंगे जो भाषा शास्त्री हैं, भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, और भाषा का ही ज्ञान नहीं है बल्कि संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और खूब अच्छा रियाज करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो न तो भाषा काम आ रही है और न कंठ काम आ रहा है जहां से ध्वनि निकल रही है, तो फिर काम क्या आ रहा है। मित्र, मुझे लगता है कि हमें इसी तथ्य को समझना चाहिए कि मूलतः काम क्या आ रहा है। जो काम आता है फ्रेंड्स, वो जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं अपनी छोटी सी समझ के आधार पर ही आपको अपनी बात प्रेषित कर रहा हूं, वह है उसका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कहने का मतलब है कि उसके मन में क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, ये सारी बातें मिलकर उसकी ध्वनि का निर्माण कर देती हैं और उसके लिए भाषा के शब्दों का चयन भी कर देती हैं। ये जानबूझकर कुछ नहीं करता है। सच पूछिए तो मैंने तो यहां तक महसूस किया, मैं महसूस करने की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिकल किए हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से बहुत नाराजगी है, ठीक है, टाइम फिक्स हो गया कि नहीं 5 बजे उनसे बातचीत करने के लिए जाना है, तो मैं अपने मन में खूब सोच करके जा रहा हूं कि नहीं यार जब जाएंगे तो क्या नाराजगी में रखा है, बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा कि पता ही ना लगे कि मैं उससे नाराज हूं, फलाना फलाना, और मैं खूब सोच कर जा रहा हूं, बार बार अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, याद कर रहा हूं कि नहीं बड़े तमीज के साथ वहां पेश आना है, और पता लगा कि गए तो 5-7 मिनट तो वो तमीज याद रही, और 5-7 मिनट के बाद जैसे लकड़ी धीरे धीरे सुलगते सुलगते फिर भभकने लगती है, चीजें धीरे धीरे होने लगी, अब टोन बदलने लगा, सांस की गति में फर्क आ गया और शब्द भी बदलने लगे, फिर से संभाल रहे अपने आप को कि नहीं नहीं यार देखो कम यहां तो अच्छे से बात करने के लिए आए थे, फिर थोड़ा सा संभल गए, इसके बाद फिर से वही पुरानी चीज आने लगी। तो मतलब पता लगा कि सारा ध्यान केवल अपने को संभालने में ही लग गया, बातचीत क्या करनी थी क्या नहीं करनी थी और क्या की गई उस पर से तो हट ही गया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जहां बातचीत की जा रही थी, जिसके साथ बातचीत की जा रही थी, उसके प्रति हमारा जो मन का विज्ञान है वो गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ी कह लीजिए, मतलब ये जो वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ समानांतर नहीं थी, तो मैं चाह कर भी अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, या यूं कह लीजिए कि मेरे पास जो शब्दों की संपदा है, शब्दों का भंडार है, मैं छांट छांट कर बड़े अच्छे अच्छे शब्द लाकर बात कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन उस समय वो मुझे याद नहीं आएंगे, मेरी पकड़ में नहीं आएंगे, मेरे पास जो लिस्ट आती है मेरे दिमाग के सामने तो फालतू के ही शब्दों से भरी हुई लिस्ट आती है, और उसी में से मैं कोई शब्द चुन लेता हूं, और जिस शब्द को चुनता हूं वो कोई बेहतर शब्द नहीं होते हैं। टोन, फिर जब शब्द ऐसे हैं तो टोन भी उसी आधार पर हो जाएगी। अब आप जब ढोलक पर थप्पी मारेंगे तो उसमें से हारमोनियम की धुन तो नहीं निकलेगी, तो शब्द तो ऐसे ही है, शब्द ढोलक नुमा है, नगाड़ा नुमा है, अब उसमें से शहनाई की आवाज कैसे निकले, सितार का वादन कैसे हो, नहीं होगा। तो शब्द अपने साथ धुन लेकर के आ जाते हैं, ध्वनि लेकर के आ जाते हैं, और शब्द और ध्वनि का ये जो तालमेल हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है, रूडनेस आ जाती है। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सामने वाला भले ही कुछ कहे ना, सामान्य तौर पर अगर वो मान लीजिए कि हमसे पद में छोटा है, उम्र में छोटा है, लिहाज करता है, सम्मान करता है, किसी वजह से दबा हुआ है, तो वो कुछ कहेगा नहीं कि आप ये कैसे बात कर रहे हैं, इतनी रूडली क्यों बोल रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो इशारे से ये कह देगा, पूछ लेगा कि तबीयत तो ठीक है ना, मतलब पूछ तो आपकी तबीयत रहा है, लेकिन वो जानना ये चाह रहा है कि भाई आपके बोलने का ये जो लहजा गड़बड़ा गया है ये क्या कारण है, कहीं आपको मुझसे तो नाराजगी नहीं है, मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है। तो वो अपने अपने कहने का अंदाज है, अपने अपने ढंग से लोग कह देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहां जो चीज काम कर रही है वो क्या कर रही है, कि उसके प्रति हमारे अपने मन में किस तरह की अवधारणा है, किस तरह के विचार हमारे दिमाग में पल रहे हैं, वही हमारी भाषा का और वही हमारे बोलने के टोन का निर्धारण कर देते हैं। पहली बात ये तो वह है दोस्तों, मैं दूसरे के आधार पर स्वयं के अंदर जो चीज आ रही है उसकी बात की मैंने। एक और चीज होती है जो सिर्फ मेरे अंदर होती है, मुझे दूसरे की चिंता ही नहीं होती कि वो क्या है कैसा है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है फ्रेंड्स, जिसे मैं कहता हूं ईगो। ईगो तो हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व, हमारा जीवन, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी उदारता, हर चीज का निर्धारण करने का सबसे प्रबल तत्व है ईगो, चाहे वो बेहतरी के लिए हो चाहे वो बदतरी के लिए हो। ईगो दोस्तों जिनमें रहेगा, याद रखिए, वो दूसरों को आसानी से पचा नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जो इगोइस्ट लोग होते हैं ना, जो दूसरों के सामने बड़े झुके झुके नजर आएंगे, बड़े कोमल कोमल से दिखाई देंगे, आपको लगने लगेगा कि यार ये इस आदमी से तो अच्छा आदमी ही कोई नहीं हो, लेकिन वो केवल उस आदमी के सामने है। उसको हटा करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है। ये तो हाथ दोनों चारों हाथों में पता नहीं कितना कितने अदृश्य तलवार थामे हुए है। ईगो कभी आपको सहज रहने दे ही नहीं सकता, क्योंकि ईगो में अपने महत्व की बात तो चलिए रहती ही रहती है, वहां तक तो कोई चलिए एतराज भी ना हो, लेकिन जो सबसे एतराज करने वाले जो तत्व होता है फ्रेंड्स, वो होता है दूसरों को रिजेक्ट करने की बात। अरे भैया आप अपने को बहुत बड़ा समझ लीजिए, बहुत महान समझ लीजिए, बहुत ज्ञानी, बहुत पैसे वाला, बहुत अधिकार संपन्न, बड़े पद वाला, कुछ भी समझ लीजिए, बड़ा स्मार्ट, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, कुछ भी समझ लीजिए, आप समझते रहिए, हमको कुछ नहीं लेना देना है, हम भी समझ लेते हैं, आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को गधा क्यों समझ रहे हैं, दूसरों को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं, दूसरों को फालतू का क्यों समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट होता है। देखिए अगर मैं अपने को बहुत अच्छा समझ रहा हूं तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपने को ज्यादा प्यार कर लेता हूं, कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, अपने को प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व में सॉफ्टनेस ला देता है। प्यार करना अलग बात है और ईगो लेकर के चलना अलग बात है, तो कर लीजिए चलिए। लेकिन दूसरों का जो वजूद है, दूसरों की जो गरिमा है, डिग्निटी है, आप उसको लात कैसे मार सकते हैं, आप उसका निरादर कैसे कर सकते हैं, आप उसको कम करके कैसे देख सकते हैं। तो ये जो ईगो है फ्रेंड्स, चूंकि दूसरों को हमेशा हीन की दृष्टि से देखता है, तो कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में कि दूसरे क्या हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे से ही तो कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि अगर मैंने दूसरे को हीन मान लिया है, इन्फीरियर मान लिया है, तो मेरी भाषा भी उसी तरह की होगी जैसे कि मैं किसी हीन व्यक्ति से बात कर रहा हूं, किसी इन्फीरियर व्यक्ति से बात कर रहा हूं। और केवल हीन और इन्फीरियर व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बहुत ही सुपीरियर आदमी इन्फीरियर से बात कर रहा है, तो मेरी भाषा उसी तरह से बदल जाएगी। तो मित्रों अब वक्त हो चुका है, बातें और की जा सकती थी, लेकिन अब हमें अब इस टॉपिक को फिलहाल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो मित्रों अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।